धातु मनुष्य को रखना चाहिए। जब व्यक्ति में उत्साह होता है इसका मतलब है उसका काम हो गया, क्योंकि उत्साह से ही व्यक्ति के काम बने बनाए भी बिगड़ जाते हैं। उत्साह से लक्ष्मी प्राप्त होती है, उत्साह से परम सुख मिलता है, उत्साह से बने हुए काम बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, उत्साह से न होने वाले काम हो जाते हैं। अतएव सीता की मैं फिर दोबारा खोज करूंगा। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, अभी तो लंका बहुत बड़ी है, रावण के इन महलों के अंदर सीता नहीं मिली तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैंने पूरी ही लंका देख ली। लेकिन मुझे तो लंकिनी ने इधर विशेषता से देखने के लिए कहा था और वो मैंने रावण का महल देख लिया। अच्छा तो ठीक है, मैं उत्साह रखता हुआ फिर आगे अपना काम करता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति उत्साह संपन्न होकर सोचता है उसके दिमाग में बहुत अच्छी 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 बातें आती हैं। इसलिए मुझे उत्साहवान होकर चेष्टा करनी चाहिए। अभी तो बहुत सी ऐसी जगह जो मैंने देखी नहीं है और वो रावण पालित है और लंकिनी के द्वारा इशारा की गई है, ऐसी भी तो कई जगह हो सकती है। अभी तो मैंने रावण का महल देखा है, पुष्पक विमान देखा है, आपानशाला देखी है, अभी तो मैंने मांसशाला देखी है, लेकिन इसके अलावा भी रावण के क्रीड़ांगण माने क्रीड़ागृह वो बाकी है और दूसरे निष्कुटांतर रथ्याश्च और कुछ ऐसे ऐसे छिपे हुए स्थल भी है जो मैंने नहीं देखा है, वो भी तो मुझे देखने चाहिए। बहुत से ऐसे यहाँ तहखाने भी है जिन तहखानों के अंदर मैं प्रवेश नहीं किया हूँ, जिन तहखानों के ऊपर बड़ा पहरा लगा हुआ है। इन पहरेदारों से आंख बचाकर तहखानों में जाना और फिर सीता की खोज करना, ये काम भी तो बाकी है। ओहो, जब मैं रावण के पास पहुंच सकता हूँ तो फिर मैं सीता के पास क्यों नहीं पहुंच सकता? मुझे राक्षसाधम माने नीच राक्षस रावण, ये जब मुझे मिल गया तो मुझे मेरी माँ सीता क्यों नहीं मिलेगी? सीता तो मुझे मिलनी ही चाहिए। सर्वम अपि अवकाशम से, इस प्रकार से विचार करके हनुमान जी महाराज फिर उत्साह रख करके और खुद का लगा करके आगे बढ़े। हनुमान जी महाराज अब और ज्यादा सावधानी से सीता जी को देख रहे हैं। चतुरंगल मात्रोपी नावकाश से विद्य थे, चार अंगुल की जगह भी उन्होंने बिना देखे नहीं छोड़ी। इस प्रकार से सब प्राकारांतर वीथ्याश्च, बड़े बड़े जो परकोटे हैं, परकोटों के अंदर जो खाली जगह होती है उन खाली जगहों के अंदर हनुमान जी प्रवेश किए और वहां जाकर उन्होंने देखो, राजाओं के इतने बड़े परकोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, देखा ही है ये परकोटे पूरे के पूरे भरे हुए नहीं होते कि इतनी कोई भरावट रही हो, इनके अंदर थूत रहती है, क्योंकि जिस समय में शत्रु का आक्रमण होता था और वहां से उनको भगना था तो कहां से भगे, और जगह से तो भगना नहीं दे, उनका एक गुप्त रास्ता होता था इन परकोटों के अंदर से जो है निकल करके चुपचाप कहीं और के और चले जाए, फिर सुरंग के द्वारा कहीं जाकर के अपने प्राण बचा सकते थे। ऐसे ऐसे प्राकारांतर वीथ्यश्च माने बड़े बड़े परकोटों के अंदर जो गलियां हैं उन गलियों को मुझे देखना है और मुझे पुष्करणियों को देखना है, क्योंकि बड़े बड़े जो है ये पुष्करणियां माने तालाब और छोटी माने तलैया, इन तलैयों के पास में कई ऐसे मनोरम स्थल रहते हैं जहां इन तालाब तलैयों में स्नान करने वाले लोग स्नान करके वहां उन तलैयों के पास के मकानों में रहते हैं, तो मुझे अभी वो देखना है। चलो मैं एक एक चीज करके वो देखूं। तो भाई वहां पर गए हनुमान जी महाराज और वहां पुष्करणियों के पास में गए, वहां पर जो है वेदिकाओं के पास में गए और वहां प्राकार वीथियों के पास में गए, सब जगह विविध आकार वाले राक्षस हैं या राक्षसियां हैं, वहां पर कोई सीता का पता नहीं चला। हनुमान जी महाराज उन सब से आंख बचा बचा करके देख रहे, उनकी दृष्टि में आया कि यहाँ सीता नहीं है। कहीं पर उन्होंने देखा और ये विद्याधर स्त्रियां, आकाश में रहने वाली उच्च जाति विद्याधर, उनकी स्त्रियां यहाँ पर मौजूद हैं, पर सीता तो नहीं है। नाग कन्याओं को देखा और देव कन्याओं को देखा, गंधर्व कन्याओं को देखा, नतुसा जनकात्मजा, पर तो यहाँ तो सीता का कोई पता नहीं है। उस राक्षस राज ने नाग कन्याओं को जब बलपूर्वक लाया तो वो नाग कन्याएं इतनी श्रेष्ठ इतनी सुंदर, देखो ये नाग कन्याएं शिवजी की पूजा करती थी। भागवत में आता है कि नाग कन्याएं भगवान शंकर जिस समय लेटे रहते हैं बहुत लज्जा से इनकी इनका स्पर्श करके इनकी पूजा करते हैं। उन नाग कन्याओं में से नाग कन्या रावण यहाँ लाया पर नशा जनक नंदिनी, लेकिन कहीं पर भी जनक दुलारी सीता का कोई पता नहीं चला। हनुमान जी महाराज कभी उत्साह लाते हैं फिर विषाद को प्राप्त होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे मिथ्या उत्साह से क्या होगा, मेरे मन में तो ये जची हुई है कि वो मर गई, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं और उत्साह रखो, उत्साह तो स्वतः आया हुआ काम आता है, अब मैं क्या करूँ। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज फिर जो है उद्योग करने की सोचते हैं और फिर सागर को पार करके मेरा यह आना व्यर्थ हो गया, बंदरों का यहाँ सागर के पास आना व्यर्थ हो गया और मेरा यहाँ रावण के महल में आना भी व्यर्थ हो गया और रावण को मैंने देखा है, मेरा रावण के साथ में ये देखना दर्शन होना ये सब मेरा व्यर्थ हो गया, इसलिए अब मुझे किस प्रकार से सीता मिले किस प्रकार से सीता मिले आगे मुझे कोई प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे सोच करके हनुमान जी महाराज एक जगह बैठे बैठे आगे का विचार कर रहे हैं क्या कैसे सीता मिले। देखो गोस्वामी जी महाराज को तो कोई ज्यादा देर नहीं लगाई कि भाई विभीषण जी मिल गए, अशोक वाटिका बता दी, पर वाल्मीकि जी के जो हनुमान जी हैं इन हनुमान जी का चातुर्य विशेषता से दिखाना है इनको, इसलिए सीधे सीधे सीता जी नहीं मिले हो। अब ये सीता जी जिस प्रकार से मिलेंगे वो मध्यम विश्राम के बाद की कथा में। वाल्मीकि जी महाराज बड़े मीठे बोलते हैं कि भाई तुमने कब आवाज सुनी वाल्मीकि जी की, तो कि हमने वाल्मीकि जी की आवाज वाल्मीकि रामायण में सुनी है। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कैसे बोलते हैं कि कविता शाखा कविता रूपी टहनी पर बैठ करके वाल्मीकि जी रूपी कोयल ने बड़ी बढ़िया रामचरितमानस ये राम जी की कथा सुनाई। तो तुमने क्या अक्षर सुना उनका कि कूजंतम राम रामेति। वाल्मीकि जी ने जगह जगह राम 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 खूब लिखा है। देखो गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में जितनी चौपाइयां हैं इन चौपाइयों में प्रत्येक चौपाई में रे अथवा मैं ये दो जरूर लिखे हैं। कुछ चौपाई ऐसी है कि जहां रे और मैं दोनों ही नहीं है, इसका कोई न कोई विशेष कारण है, परंतु प्राय करके चौपाई रे और मैं इन दोनों में से कोई न कोई अक्षर जरूर रहेंगे। तो कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, बड़ा मधुर अक्षर राम नाम का वो वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि रामायण में बोलते हैं, कविता रूपी शाखा पर बैठ करके बोलते हैं। और उसमें भी ये सुंदरकांड का प्रसंग है और सुंदरकांड में भी हनुमान जी महाराज जहां एक ओर अपने शरीर बल को दिखाते हैं वहां ये अब बुद्धि बल को भी दिखाते हैं। बुद्धि बल और देह बल ये दोनों बल दिखाने का यदि एक जगह कोई केंद्र है तो हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड में ही है, लंका में ही है। जब वापिस जाकर के और लड़ाई के लिए आएंगे तब तो शरीर बल ही काम आएगा, अभी शरीर बल भी है और जो है बुद्धि बल भी है, विशेषतः बुद्धि बल ज्यादा काम आ रहा है। तो देखो रावण की आपान भूमि को, रावण की मांसशाला को, रावण की घुड़शाला को, रावण की गजशाला को, रावण की रथशाला को और रावण के दूसरे सब मकानों को देख लिया, कहीं पर भी सीता नहीं मिली। हनुमान जी महाराज बहुत विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। हनुमान जी महाराज एक निश्चिंत होकर एक परकोटे पर बैठ गए, जिस प्रकार से बरसात के समय में काले मेघों के बीच में बिजली रहती है, ऐसे हनुमान जी महाराज वहां बैठे हुए विचार करते हैं। मैंने इस लंका को चारों तरफ से देखा है, विशेषतः रावण के प्रत्येक महल को देखा है, परंतु सर्वांग सुंदरी सीता का मुझे कहीं भी दर्शन नहीं हुआ है। मैंने यहाँ के पत्ते पत्ते को देखा है, तालाब तालाब को देखा है, नदियों को देखा है, सरोवरों को देखा है। देखो, तालाब और सरोवर में अंतर होता है। तालाब होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, सरोवर होते हैं बहुत बड़े विशाल होते हैं सरोवर। सरोवरों को देखा है और उन स्थानों को हमने देखा है कि जहां खूब से वृक्ष हैं, जो वृक्षों से खूब घने हुए हैं, माने सट सट के जहां वृक्ष लगे हुए हैं, उन स्थानों को मैंने देखा है। मैंने सुनसान पड़े हुए दुर्गों को देखा है, किलों को देखा है, यहाँ के पर्वतों को देखा है, कंदराओं को देखा है, परंतु इतने पर भी जिन चीजों को मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, उन सब को यहाँ देखा है, परंतु नच पश्यामि जानकीम, सीता को मैंने नहीं देखा है। परंतु यदि सीता नहीं होती तो हमको गीतराज संपाति ने कैसे कह दिया कि वो रावण के महल में है? गीतराज झूठ क्यों बोलेंगे? और गीतराज को इतनी दूर से दिखाई दे गई, लेकिन मुझे यहाँ रहते हुए भी दिखाई नहीं देती है, ये क्या बात है? ऐसा हो सकता है जिस दिन गीतराज ने देखा उस दिन तो सीता जीवित थी और उसके बाद सीता को रावण ने मार लिया है, अन्यथा और कोई दूसरा कारण है नहीं। यदि मैं ये सोचूं कि बिव्यतो राम बाणानाम अंतरा पतिता भवेत, राक्षसराज के मन में ये भय पैदा हुआ हो कि यदि मेरे पीछे राम आ रहे होंगे तब जो है वो मेरे बाण लगाएंगे, तो उस समय में राम के बाणों से भयभीत हुए रावण ने सीता को शायद बीच में कहीं गिरा दिया हो। परंतु यदि बीच में सीता को कहीं गिराते तो कहीं कहीं से हमको कोई सूचना जरूर मिल जाती है, क्योंकि आकाश में देवता भी रहते हैं, सिद्ध भी रहते हैं, गंधर्व चारण ये सब रहते हैं, कहीं कहीं से सूचना जरूर मिल जाती है। जब राम जी महाराज के लिए अगस्त ऋषि इतना ध्यान रखते हैं कि उनके लिए वे शस्त्र देते हैं, वे देवता सीता जी को इस प्रकार से नीचे गिरा हुआ कैसे देख सकते हैं? यदि सीता मर गई होती तो राम जी के मन में हम लोगों के भेज करके खोजने की इच्छा क्यों होती? क्योंकि खोजी तो वही वस्तु जाती है जिस वस्तु की सत्ता है, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती। क्या ऐसा भी हो सकता है कि रावण बड़े वेग से सीता को ले जा रहा हो और उसके वायु के वेग को सह नहीं सकी हो और वो वहीं पर मर गई हो? तो भी कोई बात नहीं, मेरे पिता वायु देवता तो कम से कम मुझे इस विषय में बता ही सकते थे कि बेटा हनुमान, वो तो मेरे सामने मेरे वेग से मर गई है, तो उसके लिए क्यों प्रयास करता है? ऐसा भी नहीं हो सकता। रही बात कि सागर के अंदर वो डूब गई हो, तो सागर जब मुझे मैनाक पर्वत को उपस्थित कर सकता है तो वो सागर सीता के लिए अपने हाथ क्यों नहीं उपस्थित कर देगा? वो सीता को अपने हाथों में लेकर सीता की सुरक्षा करेगा। अरे, रावण के हाथ से गिर जाती तब तो सीता के लिए इतना चिंता करने की बात ही नहीं थी। बात तो यह है कि वो गिरी भी नहीं, मरी भी नहीं और मुझे यहां मिली भी नहीं। रावण ने यहाँ पर सीता को शायद डराया होगा, धमकाया होगा, और सीता ने अपना कोई भाई बंधु यहाँ नहीं देखा होगा, तब जो है रावण ने भी यही देखा कि अब सीता को कौन पूछने वाला, अपने खा जाऊं। लेकिन इतना बड़ा दुस्साहस रावण कर ले ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों नहीं करे? रावण एक राक्षस है, जब वो सुने सीता को ला सकता है तो फिर वो सीता को खा क्यों नहीं सकता? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, सीता मरने वाली नहीं है, क्योंकि यमराज जी भी सूचना दे सकते थे। वो हा राम, हे लक्ष्मण, हे अयोध्ये, हे कौशल्ये, ऐसे शायद विलाप करते 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 यहां मर गई हो और वो संपत्ति के देखने के बाद मरी हो। ओहो, एक बात तो मैं भूल ही गया, मैं रावण के सब जगह गया, लेकिन जहां सारिका है, तोता मैना जहां पलते हैं, उन तोतो मैनों के पास में मैं नहीं गया, क्योंकि तोता मैने के पास यदि मैं जाता तो तोता मैना को तो वो अपने पियर से पालती रहती है, वहां वह जरूर तोते को देखती, रावण के महल में पिंजरे में देखती, और वो तोता मैना से जरूर प्रेम करती, अथवा अपने रोने के बाद उन सारिकाओं से जरूर कहती। लेकिन यदि मैं वहां की सारिका के पास जाऊं, माने तोता और मैना, मैना को संस्कृत में सारिका बोलते हैं, यदि मैं उनके पास जाऊं और उनसे बात भी करूं, तो वे सारिका इतनी पढ़ाई हुई होती है कि कल ने वो रावण को कह भी सकती है कि एक बंदर यहाँ आया था, उसने हमको सीता के लिए पूछा था, ना बाबा ऐसे खतरे का काम करना हमारे लिए ठीक नहीं है। आते उस सारिकाओं के पास, क्योंकि बेसमझ के प्राणी है, रटी रटाई बात बोलते रहते हैं, इनके पास जाने में कोई लाभ नहीं है। विनष्टा प्रनष्टा वा, देखो या तो वो खुद मर गई, या इसको मार दिया, और या फिर जो है वो ऐसी रावण के वश में आई होगी, ऐसी जगह रखा होगा जो अभी तक मुझे मालूम नहीं है, तीसरे के अलावा कोई बात नहीं है। यदि मैं अब क्या करूं, अब मैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं राम जी को बोल दूं कि लंका में मैं गया था, मुझे वहां सीता नहीं मिली और मैं खाली हाथ लौट आया और मैं सीता का पता भी नहीं कर सका। अरे नहीं नहीं नहीं, राम को ये बात नहीं कहेंगे, अभी तो राम जी के हृदय में प्राण है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अंगूठी भी दी है, उन्होंने मुझे बुला करके कुछ सीता के लिए संदेश दिए हैं। राम जी सीता के वियोग में रो रहे हैं। देखो वियोग होना अलग है, अभाव होना अलग है। यदि राम जी सीता का अभाव देख लेंगे तब तो राम जी जिएंगे ही नहीं। निवेद्यमाने दोषस्यात्, राम जी को जाकर यदि कह दूं कि लंका में मैं गया, सीता मुझे नहीं मिली, तो संभवतः वो सीता को मरावा समझ करके और जो है कोई न कोई काम कर लेंगे, दोष पैदा हो जाएगा। कथम नकुल कर्तव्य, वो क्या करूं, मैं हाँ कहूं या ना कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं किसी से कोई बात भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर ये लंका है, राक्षसों की नगरी है, यहाँ कौन हमारा हो सकता है, कोई हमारा नहीं है। ओहो, यदि मैं सीता को बिना देखे चला गया तो मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा, इतना बड़ा मैंने उद्योग किया, कितना मैंने देखो मैनाक पर्वत का भी आश्रय नहीं लिया, मैं सुरसा को जीत करके, छाया ग्राहिणी को जीत करके, लंकिनी के निर्देश को पाकर के यहाँ आया, ये सारे काम मेरे लिए व्यर्थ हो गए, कोई मतलब नहीं निकला, कोई इससे सार की बात नहीं मिली, उल्टा लंका जैसी नगरी में आया, उल्टा रावण जैसे पापियों का दर्शन हुआ, उल्टे रावण के यहाँ रहने वाली इन राक्षस रानियों का और दूसरी कन्याओं का मुझे यहाँ पर खोटा खोटा दर्शन हुआ, फायदा क्या हुआ। लोग मुझे कहेंगे कि तुम वहां गए तुम्हें क्या लाभ हुआ, तो मैं उनको लाभ क्या बताऊंगा, उल्टे मेरे नुकसान की बात बताऊंगा। मुझे सुग्रीव जी क्या कहेंगे, मुझे दूसरे बानर क्या कहेंगे। अरे कितना भरोसा था सुग्रीव का, भरी सभा में सुग्रीव ने खड़ा होकर राम जी को मेरे लिए विश्वास दिलाया। राम के पास में सारे बानर जाति में सबसे पहले मैं ही तो उपस्थित हुआ था। राम ने कितनी मेरी लक्ष्मण के सामने बड़ाई करते हुए कहा कि ये कितना बुद्धिमान है, और जिसका ऐसा दूत है वो दूत कभी नष्ट नहीं कर सकता स्वामी के कार्य को, बल्कि स्वामी तो और उन्नति को प्राप्त होता है। ऐसी ऐसी मेरी प्रशंसाएं की थी, उन प्रशंसाओं का क्या होगा। अरे राम, मैं तो राम जी के पास नहीं जा सकता, और सीता भी है, सीता भी मर गई, इसमें मुझे संदेह तो नहीं लग रहा है, लेकिन करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं और कौन सा कदम उठाऊं, बहुत कठिन बात हो जाएगी। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को, अपने आदमी को कभी कठोर बात नहीं सुनाई, मेरे जीवन में पहली बार कठोर वाणी निकलेगी राम जी के सामने, औरों के सामने भी, कि सीता को मैंने प्राप्त नहीं किया, सीता मर गई है। ये कठोर वाणी मैं कैसे कहूं, क्यों मैंने कभी कठोर वाणी ऐसी कही नहीं। शत्रु पक्ष को ललकारा है पर मित्र पक्ष के सामने कठोर वाणी मैंने नहीं कही है। यदि दुर्भाग्य से मेरे से ये शब्द निकल गए तो निश्चित रूप से राम का शरीर नहीं रहेगा, राम नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे, और इन दोनों की मृत्यु का समाचार सुनकर के भरत और शत्रुघ्न रोते बिलखते अयोध्या छोड़कर जंगल के अंदर फिरते फिरते वो भी मर जाएंगे। उनके पीछे माताएं भी अपना अयोध्या छोड़ देंगी, न कौशल्या रहेगी, न सुमित्रा रहेगी, न कैकेयी रहेंगे, और अपने मित्र का उपकार प्राप्त किए हुए सुग्रीव क्या किष्किंधा पर फिर राज्य को जो है सुरक्षित रखेंगे, कभी नहीं होगा। सुग्रीव भी मर जाएंगे, और सुग्रीव जी के मर जाने के बाद में फिर सुग्रीव की स्त्री रूमा है वो भी मर जाएगी, और बाली की जो पत्नी है तारा वो भी मर जाएगी। एक राम के मरने पर कितनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तारा के मरने के बाद माता पिता नहीं रहे, सुग्रीव नहीं रहे, तो अंगद क्यों जिएगा, अंगद भी मर जाएगा, और अंगद के मर जाने के बाद फिर दूसरे जो प्राणी है सब प्राणी मर जाएंगे, और उनको कोई मारने के लिए नहीं आएगा, वो अपना ही सिर फोड़ फोड़ करके, अपनी छाती ठोक ठोक करके पर्वतों में जाकर अपना सिर फोड़ करके वे मर जाएंगे। कोई उनको सांत्वना देने वाला मनाने वाला व्यक्ति भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब सब मरने के लिए कौन किसको बचाए, और वो मर जाएंगे तब उनकी स्त्रियां और उनके बालक वो भी मर जाएंगे। न जंगलों में कोई रहेगा, न पर्वतों में रहेगा, यहाँ पर कोई बानर दिखाई नहीं देगा, सब बंदर मर जाएंगे, और अयोध्या में कौन सा जीवित रहेंगे। दूसरे जो है मनुष्य वे भी मर जाएंगे अपने स्त्रियों के साथ और अपने पुत्रों के साथ, वो भी मर जाएंगे। एक जगह की मृत्यु से सब सबकी मृत्यु बंधी हुई है। इसलिए अपने तो एक काम करो, न तो कहीं जाओ न कहीं आओ, अपने तो यहाँ पर जहर खा करके मर जाओ, और या भाई यहाँ फांसी खा करके मर जाओ, या जंगल तो यही है, यहाँ सूखी लकड़ियां खूब है, लकड़ी जगा करके इसमें मर जाओ, और या कहीं मरने की जरूरत नहीं, ये समुद्र पड़ा, समुद्र में डूब जाओ। अथवा भाई अंगद ने जो कहा कि प्रायोपवेश के लिए बैठ जाओ, यहाँ प्रायोपवेश के लिए बैठ जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। किसी भी उपाय से कुछ भी हो, अपने को जो है लोगों को जाकर मुंह दिखाने का तो काम रहा नहीं, जाना नहीं, यही मरना है। एक इक्ष्वाकु कुल के नाश से सबका नाश हो जाएगा, तो मैं न तो किष्किंधा में जाऊंगा, न मैं लंका में जीवित रहूंगा, अब मैं अपने शरीर को यहीं समाप्त कर लेता हूं। मैं सीता के बिना किसी के पास जाना ठीक नहीं समझता। अच्छा, अब यदि मैं नहीं जाऊंगा तो भाई नहीं जाऊंगा तो फिर वो बानर लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बानरों की प्रतीक्षा राम जी कर रहे होंगे, राम जी की प्रतीक्षा भरत जी करते होंगे। अरे ये भी तो एक क्रम बंधा हुआ है, ये भी बड़ी विचित्र बात है। हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्ष मूलिक है, तो ऐसा करें कि न तो अपन मरे न कहीं जाए, अपन एक साधु बन जाए, वानप्रस्थी बन जाए, क्योंकि हमारे कोई लुगाई टावर तो है नहीं, इसलिए सन्यासी बन जाए, वानप्रस्थी हो जाए, और हस्तादान अपने आप ही खाने के लिए हमारे पास हाथ में कुछ न कुछ पपीता केला वगैरह आ ही जाएगा, और अपने आप ही हमारे मुख में कोई न कोई खाने की चीज आई जाएगी। हस्तादान है, मुखादान है, नियतो वृक्ष मूलिक है, बहुत से वृक्षों में फल लगे ही हमको कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। अतएव वानप्रस्थी हो जाऊं, न तो आत्महत्या का दोष लगेगा, क्योंकि जहर वगैरह के खा के मरना तो आत्महत्या है, आत्महत्या तो बहुत बड़े भारी पाप की बात है, इसलिए वानप्रस्थी बन जाऊं, साधु बन जाऊं। साधु बनकर के क्या यहाँ लंका में रहूं? ना ना, लंका में तो कोई साधु रहता ही नहीं, यहाँ तो उल्टे साधु बनकर के और यहाँ पर आफत मोल लेनी है। अपने तो सागर के किनारे किनारे बहुत से आश्रम है, उन आश्रम में जाकर के रह जाएंगे, और वहां यदि जाकर के एकांत में मर भी गए तो कोई बात नहीं है, वहां बेचारे कई कौवे वगैरह पक्षी है वो मरे हुए शरीर को खा लेंगे, या कोई श्याली है वो खा जाएंगे, या कोई समुद्र के अंदर यदि गिर गए पड़ गए तो वहां पर भी कोई ना कोई खा लेंगे। इसलिए शरीर को तो दूसरे लोगों का काम आ जाए इससे तो कोई बात नहीं है, परंतु भाई किसी भी प्रकार से सीता नहीं मिल रही है इस बात का एक कष्ट लेकर के मरेंगे। देखो आदमी को मरना तो है ही, मरने से पहले यदि वो पूर्ण संतुष्ट होकर के मरता है तब तो देखो मृत्यु उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन मृत्यु के समय में हृदय में कोई कष्ट रहता हो, कोई अभाव खलकता हो, कोई न कोई चिंता रहती हो, तो वो मृत्यु तो हरदम मारती रहेगी। मरे भी तो बाबा प्रसन्न होकर के मरे, अरे प्रसन्न होने की जगह भी तो नहीं है, कहाँ प्रसन्न रहे, कैसे प्रसन्न रहे, कोई हमको प्रसन्न रहने का स्वरूप भी तो नहीं मिल रहा है। प्रभग्ना चिर रात्राय मम सीताम अपश्यत है, ओहो सारी रात बीत गई लेकिन मुझे सीता कहीं नहीं मिली। तो भाई तपस्वी लोगों को हमने देखा है कि नारी मुही गृह संपत्ति नासी और मुंड मुंडाए वो ही सन्यासी। अपने बस जो है कोई काम घर में नहीं बनता दिखता है, लुगाई बच्चों से लड़ाई झगड़ा हो गया और कोई काम नहीं हुआ या लुगाई मर गई तो नारी मुई और गृह संपत्ति नासिर मुंड मुंडाए हो सन्यासी। बस ये कितना जल्दी बढ़िया काम है, इन साधुओं का काम तो बहुत अच्छा है। साधु जितना दुनिया में कौन होशियार होगा भाई, वो इधर नहीं तो अपने इधर ही सही। तो ऐसे साधु बड़े होशियार, अपने तो तापसो व भविष्यामी, अपने तो साधु हो जाओ ये मार्ग बहुत अच्छा लगता है। परंतु भाई साधु हो तो जाऊं, साधु होने में तो कोई बात नहीं है, परंतु मन में एक खटक रहेगी सीता नहीं मिली। और अंगद है वो भी अपने बांदरों के साथ में वहां प्रतीक्षा करते करते मेरे पर जीवन की आशा लगाए हुए है, ऐसा तो ऐसा करूं मैं उन बंदरों के पास जाऊं और बंदरों को जाकर कह करके उनको कह दूं कि आप लोग यही प्रायों को वेश करके मर रहे थे ना, आप लोग वैसे ही मर जाओ और मैं भी उनके साथ मर जाऊं, ताकि बाबा अब मुझे तो दोष न लगे। क्या करूं मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एवं बहुविधम दुखम, इस प्रकार से हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हो गए और अपने मन में तरह तरह की कल्पना करने लगे, वे अपने शोक को पार नहीं कर सके। और फिर अंत में सोचा अरे मरना तो मुझे है ही, लंका में मुझे रहना है नहीं, सीता मुझे मिली नहीं, एक काम तो कर जाऊं जाते जाते कम से कम इस रावण को तो मार ही दूं। मैं जाऊं रावण के महल में और रावण का जो पलंग है उस पलंग को उठा लाऊं, रावण के पलंग को उठा करके और इसको उलट करके मैं उसको सागर में डुबो दूं, अथवा कहीं अग्नि प्रज्वलित कर दूं और रावण को जीते जी अग्नि के अंदर डाल दूं। कम से कम एक काम तो पूरा होगा, रावण को ये तो पता चलेगा कि बड़े भारी पाप का फल मनुष्य को बहुत जल्दी हाथों हाथ मिला भी करता है। अथवा सीता तो नहीं मिली लेकिन ये हाँ एक काम बड़ा अच्छा लगा, अरे अरे इतना क्यों करें, इस रावण को उठा करके और सीधा प्रस्रवण पर्वत पर राम जी के वहां पर ले चले और मैं वहां आकाश से ही बंदरों को बोल दूंगा कि आओ बंदरों जल्दी प्रस्रवण पर्वत पर आओ, जैसे सीता का रावण ने हरण किया आज मैंने रावण का हरण कर लिया है, और रावण का हरण करके मैंने राम जी के हाथ में इसकी गर्दन सौंप दी, आओ आओ सब लोग आ जाओ, सब बंदर आएंगे। और फिर राम उनको पूछेंगे रावण या तो तू मुझे सीता को बता नहीं तो मैं तेरे प्राण लेता हूँ। उस समय सब बंदरों के सामने हम रावण को कान पकड़ा करके पूछेंगे कि बता सीता कहाँ है, यदि रावण नहीं बताएगा तो भाई ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसको अपने प्राण ज्यादा प्यारे हैं, उसको लंका बहुत प्यारी है, अतः उस सीता को बताना पड़ेगा। जहां भी वो बताएगा वहां से मैं ले आऊंगा, अथवा मैं ही उसको पूछ लूंगा, हाँ ये काम बड़ा अच्छा है, रावण को मारो, रावण को राम जी के पास ले जा करके मारो, तब सीता का ज्ञान होगा। अरे मैं बुद्धिमान होकर के भी व्यर्थ ही चिंता करने लगा, अनावश्यक में इतनी इतनी सोचने लगा, सीधा सीधा मार्ग है बहुत अच्छा है, ये सीता जी का मार्ग बड़ा अच्छा है। ऐसे वो हनुमान जी महाराज चिंतित हुए बैठे हुए थे, बैठे बैठे विचार किया कि हाँ लंकिनी ने मुझे कहा कि तुम इधर ही जाओ और रावण के महलों के उधर ही आपको सीता मिलेगी। तो भाई आखिर जिसको ब्रह्मा जी का वरदान याद है, जिसको अपनी तपस्या का फल याद है, जिसको राम जी की कथा याद है, एक अनजाने बानर को वो सीता का नाम लेकर बोलता है, बोलती है, ऐसी वो लंकिनी झूठ तो नहीं बोलेगी? हमने लंका का सब कुछ देख लिया क्या? सब जगह देख ली थोड़ी रावण की, कोई जगह बाकी तो रखी नहीं। चलो संपाति बूढ़ा है, उसकी बात पर विश्वास तो करें, थोड़ा एक बार और अपने को देखना चाहिए। रावण का महल देखा, आपान भूमि देखी, हमने रावण की मांसशाला देखी, रथशाला देखी, गोष्ठशाला देखी, गजशाला देखी और अश्वशाला देखी। रावण की इतनी तो है सब, रत्नों का खजाना तक देख लिया, सब देख लिया, सब जगह कहीं नहीं मिले। तो हाँ, एक बात तो है, रावण के महल के उस दूर की तरफ पिछवाड़े भाग में, ओहो, ये जो बहुत बड़ा बगीचा दिख रहा है जिसमें अशोक ही अशोक के वृक्ष हैं, ओहो, ये अशोक वाटिका तो देखने से बाकी ही रह गई। ये अशोक वाटिका तो बड़ी विचित्र है, खूब इसमें वृक्ष है, अरे इन वृक्षों में तो होड़ लगी हुई है। वो वृक्ष देखता है मैं ऊंचा बढ़ू, वो देखता है मैं ऊंचा बढ़ू, वो देखता है कि मैं फल देऊं, वो देखता है मैं पुष्प देऊं, वो देखता है मैं छाया देऊं। ओहो, ये